शांति सभी युवा भाई बहनों का, कुमार कन्याएं और टीचरों का स्वागत है इस हमारे पहले दिवसीय अंतिम सत्र में। और ये सत्र बहुत अपने आप में विशेष है, और वो इसलिए क्योंकि आज सवेरे से, या मैं समझता हूँ कल शाम से, हम भट्टी के जिस थीम को लेकर बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आध्यात्मिक परिपक्वता, हमने कई सेशंस अटेंड किए हैं सुबह से लेकर अभी तक, जहाँ पर हमने इस शब्द के गहराई में गए हैं, अपने जीवन से उसे रिलेट किया है। और अभी ऐसा टाइम है कि हमारे यज्ञ के पूर्वजों ने किस प्रकार स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के आधार पर आज यज्ञ को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि हम सब जानते हैं कि इतने सारे देशों में इतने सारे बाबा के बच्चे हुए हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ऐसे पूर्वजों की कहानी, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को ढाला, हम सभी के लिए एक प्रकार से प्रेरणादायी होगी। तो उन्हीं को शेयर करने के लिए हमारे बीच में तीन वरिष्ठ, यज्ञ के रतन कहो या हमारे आधार स्तंभ कहो, मौजूद है। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी, है ना? आत्म प्रकाश भाई जी हम सब कल जानते हैं कि हमारे यूथ विंग के आधार स्तंभ हैं, जो यूथ विंग के अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को सुचारू रूप से चलाना, मधुबन में यूथ विंग की सेवाओं को बढ़ाना। और हम सभी देखते हैं, जब भी बाबा मिलन होता है तभी कुमारों की या फिर युवाओं की प्रोत्साहन देने के लिए भाई साहब निमित्त है, गोल्ड मेडलिस्ट भी है, और साथ साथ उनका पूरा परिवार 50 वर्ष से अधिक इस ईश्वरीय ज्ञान में है। आदरणीय प्रभा दीदी को भी हमने आज सुबह सुना था, कल उनसे सुना था कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या होता है। आप इस परिसर के, ज्ञान सर्वर के को डायरेक्टर हैं, और कई सालों का आपको अनुभव है, आपने भी दादियों से दीदियों से पालना ली है, शिक्षाएं ली है, और अपने जीवन को उस प्रकार आदर्श बनाया है। तो उन्होंने भी दादियों को बहुत नजदीक से देखा है और उनसे जाना है, है ना? और हमारे राजू भाई जी, आप में से मैं समझता हूँ मेजोरिटी जानते होंगे कि जो बाबा की मुरलियां आती है रोज, तो मुरली डिपार्टमेंट के भाई साहब निमित्त है, साथ साथ जो ग्राम विकास प्रभाग है उसके भी भाई साहब निमित्त है। तो जो भी अव्यक्त बाप दादा मुरली चलाते थे, उनको बाकायदा टाइप करना, उनकी टाइप सेटिंग करना, बाबा के हर बच्चों तक मुरली पहुंचाना, और केवल तभी नहीं, आज भी हम जब देखते हैं जो दादियों के पत्र पुष्प आते थे, अभी भी जो मुरलियों के अंदर देखते हैं, हमें पूरे महीने भर का अभ्यास आता है, तो वो भाई साहब की लेखनी है। भाई साहब ने इतना बाबा के ज्ञान को मंथन किया है, और उस मंथन का आधार है कि रोज हमें मुरली के अंदर वरदान, स्लोगन या फिर अव्यक्त इशारे प्राप्त होते हैं। तो हम एक बार इन तीनों का ताली बजाकर स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा बहनों से कि बैच द्वारा इनका स्वागत करें, क्योंकि ये तीनों रत्न ऐसे विशेष है जिन्होंने यज्ञ को छोटे से बड़ा होते हुए देखा है। चाहे दादा विश्व किशोरो विश्व रतन हो, चाहे दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, हर दादी की, वरिष्ठों की इन तीनों ने पालना ली है, और एक प्रकार से इन्होंने यज्ञ को बढ़ते हुए देखा है। हम में से मेजॉरिटी सारे युवा तो 35 वर्ष के अंडर ही है, 21 से 35 वर्ष, तो हमने शायद कुछ दादियों को देखा होगा, दादी जानकी जी या दादी रतनमोहिनी दादी जी, लेकिन कुछ दादियों को शायद हमने नहीं भी देखा होगा, जैसे प्रकाशमणि दादी। आप में से किसने प्रकाशमणि दादी को देखा है मधुबन में, फोटो में नहीं, मधुबन में? अच्छा, काफी कम है, ठीक है। और शायद हमारे और जो है दीदी है वगैरह, मैं तो समझता हूँ शायद ही कोई होगा उन्हें देखा हुआ। तो शुरू करते हैं, हम पहला प्रश्न पूछेंगे राजू भाई जी से। तो राजू भाई जी, आध्यात्मिक परिपक्वता आपके हिसाब से क्या है, और आपने पूर्वजों के अंदर किस इस विशेष वैल्यू को किस प्रकार देखा? आपने दादी के अंग संग काफी समय भी बिताया है, दादी प्रकाशमणि को साथ आपने और अन्य दादियों के साथ भी आपने जीवन बिताया है, तो ये मूल्य उन्होंने अपने जीवन में कैसे धारण करा, आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी जिस उम्र में ज्ञान में आए, शायद उस उम्र में मैं समर्पित हो गया था, 15-16 साल की उम्र में। और जब समर्पित हुआ तो 72, आज से 54 साल पहले, दीदी मनमोहिनी की जो आध्यात्मिक परिपक्वता थी, लौकिक में उन्होंने कोई स्टडी नहीं की थी, स्कूल नहीं गई थी, लेकिन जब बाबा की बनी तो नंबर 1 टीचर बन गई। और उसका आधार था 2 बातों का ध्यान। एक, उन्होंने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया, खुद अमृत वेले उठकर योग कराती और मुरली को बहुत ध्यान से सुनती, सुनाया कभी नहीं मुरली, लेकिन सामने बैठ करके जब मुरली सुनती तो उसके प्रश्न निकालती, और ऐसे ऐसे प्रश्न निकालती जो पूरे क्लास को फेल कर देती। मुरली वही है लेकिन शॉर्ट में छोटे छोटे प्रश्न बना करके कहती, अभी मैं तुम लोगों से बैडमिंटन खेलूंगी, मैं बॉल फेंकती हूँ, तुम कैच करो, जवाब दो, जो फेल हो जाएगा उसकी टोली बंद और जो पास होगा उसको डबल टोली मिलेगी, टोली मिलती क्लास के बाद। तो दीदी ने हम लोगों को बचपन में आध्यात्मिक क्षेत्र में परिपक्व बनाने के लिए विशेष 3 बातों पर अटेंशन खिंचवाया, क्योंकि हम लोगों को कुछ पता नहीं था। लौकिक में भले हम 4 साल के थे, तभी पिताजी माताजी के साथ मधुबन में नहीं आ पाए, लेकिन मुरली के क्लास में आना बैठना या पत्रों से हमारी पालना होती थी। बाकी आध्यात्मिकता क्या है, ये जीवन क्या है, उसके विषय में मुझे कुछ पता नहीं था। तो जब हम पहले पहले आए 71 में, तो दीदी ने हमें बहुत प्यार से परखने की शक्ति थी कि ये लायक है यहाँ के, परखा था, और एक बात कही, देखो यहाँ रहना है तो संघ की संभाल करना। अब इस बात पर थोड़ा ध्यान देना सभी कुमार, क्योंकि संघ दोष बहुत नुकसान करता है। तो मेरे प्रश्न उठ गए कि मैं तो उस संघ को तो छोड़ के आया, लड़कों का संघ, स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ाई में, घूमना फिरना, बीड़ी पीना, वो सब संघ छोड़ के यहाँ आए, अब यहाँ भी कहते हैं संघ की संभाल करना। तो मैंने थोड़ा सा दीदी की तरफ देखा, बोला कुछ नहीं, क्यों डर लगता था, दीदी तो बहुत बड़ी हस्ती थी। तो दीदी कहती, तेरे को प्रश्न उठा होगा ना कि मधुबन में भी संघ की संभाल करना। हाँ दीदी, कहती देखो यहाँ भी कई कई है ना, सिर्फ कपड़े लेते हैं, सेवा करते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन कभी भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग करें, बाबा की मुरली समय पर सुने, अपने पर ध्यान दें, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। और बैठेंगे तो इधर की बातें, उधर की बातें, पर पंच करेंगे, पर चिंतन करेंगे, ऐसे संग से अपने को बचाना। अगर उनके संग में तुम बैठ गए तो तुम्हारी कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। इसलिए अच्छा संग करना, जो ज्ञान योग की इंटरेस्टेड आत्माएं हैं, जिनको बाबा की मुरली से प्यार है, यज्ञ से प्यार है, जो कभी बड़ों की ग्लानि नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के संग में भले रहो, लेकिन और सबके संग से अपने को बचाना। पहली शिक्षा ये मिली थी। दूसरी बात एक कही कि कई बार हम योग करते हैं लेकिन योग कैसे किया जाए उसका पता ही नहीं चलता। बैठ जाते हैं आकर के, तो जैसे हम सब बैठते थे, सोफा कुर्सी तो थे नहीं हमारे मधुबन में, पट में ही सब बैठते थे। तो एक दिन दीदी योग करा रही थी और योग कराने के बाद मेरे को बुलाया कि तुम मेरे कमरे में चलो। तो मैं जब कमरे में गया तो कहती है तुम योग कैसे करते हो? तो मैंने कहा जैसे सब करते हैं। तो बोलती सब कैसे करते हैं? तो मैं चुप। कहती है योग भी सूखा सूखा योग करते हो, कोई चेहरे पर रौनक नहीं दिखाई देती है, मुस्कुराहट नहीं, ऐसा सीरियस होके बैठते हो। अरे गोपी बन के योग किया करो, उद्धव बन के नहीं करो। देखा उद्धव क्या होता है? बोली उद्धव जो था ना भगवान को बहुत ऊंचा देखता था और गोपियां उसके साथ डांस करती थी तो उसको गुस्सा आता था, इसको पता नहीं है भगवान को नचा रही है। अरे उसमें सुख मिलता था, गोपियां अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती थी, मौज करती थी, और उद्धव ऐसा सीरियस भगवान है। अरे भगवान भगवान नहीं को, बाबा है हमारा, प्यार से सब संबंधों से उससे बातें करो, रूह रिहान करो, चेहरे पर रौनक दिखाई दे, याद कर रहे हो ना। तो ऐसे सिखाया कि योग करना तो गोपी बन के करना, उद्धव बन के नहीं करना, बहुत प्यार से बातें करो। और तीसरी बात बताई, कोई को भी अगर अपने को सुधारना है तो अपना शिक्षक खुद बनना। मुरली से क्लासेस से प्रेरणाएं मिलती हैं लेकिन परिवर्तन के लिए आपको अपनी स्टडी खुद करनी पड़ेगी। मैं बाबा का क्यों बना हूं, बाबा ने मुझे क्यों चुना है, इतनी दुनिया में से मुझे ही क्यों सेलेक्ट किया है, अपने से पूछो, अपने को पढ़ाओ कि मेरे अंदर अगर कोई ऐसा संस्कार है तो मुझे इसे खत्म करना, ये हमारे आध्यात्मिक मार्ग में विघ्न बनेगा। तो इसलिए अपना टीचर जो बनता है वो अपने को परिवर्तन कर सकता है। ऐसे बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं दे करके हमारे आध्यात्मिक फाउंडेशन को बहुत मजबूत किया, हिलने नहीं दिया। एक दिन भी अमृत वेला मिस हो तो उसके लिए भी बहुत कहानी है, सुनाऊंगा फिर। ठीक है, ओके, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब ने जैसे बताया, तीन चीज दीदी ने बताई जो उनको आध्यात्मिक परिपक्वता में हेल्प की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक तो संग दोष से बचना, दूसरा अपना शिक्षक स्वयं बनना, और योग, हाँ दूसरा योग में रुका सुखा योग ने मुस्कुरा के, उद्धव जैसा नहीं गोपियों जैसा। और साथ ही साथ भाई साहब ने बताया दीदी भी प्रश्नोत्तर जैसे मुरली के निकाल देते, अलर्ट टीचर रहते थे, तो ये हमें परिपक्व बनाएगा। अगला प्रश्न मैं प्रभा दीदी से पूछना चाहूंगा कि दीदी आप अपने जीवन में भी इतने सालों से ज्ञान मार्ग में हो, तो आपने पूर्वज में ऐसी कौन सी विशेषता दिखी जो आपको प्रेरित की बाबा से जुड़ने के लिए या इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए? आपको परिपक्व कैसे बनाया पूर्वजों के सानिध्य से? ओम शांति।
ओम शांति। अभी राजू भाई ने दीदी के बारे में तीन बातें बताई, ऐसे ही हमारी दीदी जी ने हम सबको कोई भी कार्य करते थे तो कार्य को एक्यूरेट करना है, ऐसे ही नहीं जैसे आया वैसा कार्य कर लिया, नहीं, हर कार्य को एक्यूरेट करना है और टाइम पर करना है। ये हमारे बड़ों ने हमको सिखाया कि जो भी है काम मिला है, ड्यूटी मिली है, तो ड्यूटी समझ करके नहीं करना है लेकिन सेवा समझ करके करना है। तो दीदी भी इस बात के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाते थे कि एक्यूरेट भी हो और एक्यूरेसी भी हो, हर काम पंचुअल रीति से होना चाहिए, अच्छी रीति से होना चाहिए। जैसे हम करते हैं, कोई ड्यूटी है, उतार दिया, काम हो गया, हमको ड्यूटी मिली है, लेकिन नहीं, दीदी ने और दादियों ने हमको ये एक चीज सिखाई, छोटी छोटी बात के ऊपर हमको चलना भी कैसे वो भी सिखाया, बैठना कैसे वो भी सिखाया। पहले जब ट्रेनिंग देते थे तो ब्रह्मा कुमारी जीवन के अंदर कैसे ट्रेनिंग मिलती थी, कैसे बैठना, संदली पर कैसे बैठना, वो भी हमको दादियां सिखाती थी कि संदली पर कैसे बैठना है, वो प्रैक्टिकल दादियां हम लोगों को सिखाते थे और हम सीखते थे। क्योंकि अभी तो हम लोग कुर्सी पर बैठते हैं, पहले तो नीचे बैठते थे, तो नीचे बैठते थे तो कैसे हमको बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, वो दीदी छोटी छोटी बात के ऊपर दीदी दादियां बहुत अटेंशन, जिसमें बड़ी दीदी का बहुत अटेंशन इस बात का रहता था, छोटी छोटी बातों के ऊपर वो हम सबको शिक्षाएं देते थे। और उस समय तो हमको वो शिक्षाएं बहुत अच्छी, और दीदी का शिक्षा देने का जो तरीका होता था, बड़े प्यार से दीदी देती थी। दीदी जो थी उनके जीवन में लव और लॉ का बैलेंस था, जितना दीदी प्यार देती थी उतना दीदी स्ट्रिक्ट भी थी। कोई भी बात दीदी के आगे कोई भी जाता था और दीदी के आगे कोई भी कोई बहाना नहीं बना सकता था, दीदी के आगे कोई झूठ नहीं बोल सकता था। दीदी के आगे जाएंगे, दीदी ऐसे युक्ति से पूछते थे तो वो अपना जो भी होता था दीदी के आगे स्पष्ट सुना देते थे। तो दीदी से हमने ये सीखा कि कैसे कोई भी कार्य करना है वो एक्यूरेट करना है, समय पर करना है, ऐसे नहीं समय चला गया, नहीं, पंचुअल। जैसे दीदी पंचुअल थी, अमृत वेला दीदी का होता था, टाइम पर क्लास में दीदी टाइम पर क्लास में जाती थी, और क्लास में जाने से पहले दीदी भंडारे में चक्कर लगाने जाती थी, भंडारे में क्या हो रहा है। तो हम मधुबन में रही थी दीदी के साथ, तो दीदी के साथ हम दीदी की उंगली पकड़ करके दीदी को भंडारे में ले जाती थी, और फिर दीदी हमको क्लास में भी ले जाती थी। हमारी ड्यूटियां कई होती थी, क्योंकि उस समय पर इतने सेवाधारी नहीं होते थे, बहुत थोड़े होते थे, तो हमको कई ड्यूटियां मिली हुई थी, तो हम कोई बहाना ना लगा सके हैं, तो दीदी मेरे को बोलती थी, तेरे को मेरी उंगली पकड़ के चलना है, मेरे को ले जाना है। अब मेरे को दीदी को ले जाना है तो मैं दीदी के साथ जाऊंगी, माना मेरे को टाइम पर जाना है, तो मेरा अटेंशन रहता था कि मेरे को दीदी को लेकर के जाना है। तो मतलब दीदी छोटी छोटी बातों को हम से ऐसे करा करके सिखाते थे। दीदी बड़ों ने हमको बहुत श्रृंगारा, बाबा भी इसी प्रकार दादियों को सिखाया और दादियों ने फिर हम सबको उस अनुसार सुनाया।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे दीदी ने बताया कि दीदी जो थे एक्यूरेट थे, है ना, पंचुअल थे, और साथ ही साथ लव एंड लॉ का बैलेंस। तो ये छोटे छोटे मूल्य होते हैं, परिपक्व बनना मतलब बहुत बड़ा काम नहीं, लेकिन छोटे छोटे चीजों पर भी अगर हम ध्यान देवे, जैसे बहन जी ने बताया, तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे हम आत्म प्रकाश भाई साहब से भी जानेंगे कि भाई साहब आपने भी अपने जीवन में इतना जो महान लक्ष्य रखा है, तो पूर्वजों की ऐसे कोई कौन सी विशेषता देखी आपने जिनको जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि पुरुषार्थ को आगे भी बढ़ाए, और आज हम सबके आप आदर्श हो, यूथ विंग में इतनी सेवाएं करते हो, तो बड़ों में ऐसी क्या बातें देखी जिनसे आपको परिपक्वता की प्रेरणा आई। ओम शांति।
ओम शांति। मैं नागपुर में पढ़ता था तो 75 में प्रकाश मणि दादी जी वहां पधारे थे तो दादी जी के व्यक्तित्व को मैंने जब देखा तो बहुत ही मैं प्रभावित हो गया और मुझे समर्पित होने की भी प्रेरणा दादी जी से ही मिली। मुझे ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाना है तो मैंने दादी जी से पूछा तो दादी जी ने मुझे स्वीकृति भी दी। तो 1976 में मैं मधुबन में आया तो मैंने देखा बहुत करीब से दादी जी मुरली कम से कम 4-5 बार सुनती थी पढ़ती थी। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का दीदियों का मुरली से प्यार था, जानकी दादी जी का भी था, तो दादी जी का मुरली से प्यार देखकर मुझे अध्ययन करने की प्रेरणा मिली। क्योंकि सेवा में मैं बिजी रहता था और इतना बिजी रहता था कि थक जाता था। फिर हिस्ट्री हॉल ही उसमें उस समय था तो मैं लास्ट में जाकर बैठता था और बहुत जुटके खाता था क्योंकि थका होता था। तो एक दिन दादी जी ने मुझे बुलाया, देखो आत्म योग में नींद जो करते हो ना वो अच्छी बात नहीं है, यहाँ का वातावरण बिगड़ जाता है क्लास का। क्योंकि दादी जी और दीदी जी स्टेज पर बैठकर योग कराती थी और मैं झुटके खाता था पीछे बैठकर। तो दादी जी का इशारा जब मुझे मिला तब मैंने उस पर बहुत ध्यान दिया, कुछ युक्तियों को मैंने अपनाया और नींद को जीतने का पूरा प्रयास किया। फिर मनोहर दादी जी का ध्यान मेरे पर गया कि ये बालक बड़ा चुस्त है। तो फिर दादी जी ने मुझे स्टेज पर बैठकर योग कराने की ड्यूटी दी। 10-12 साल मैंने स्टेज पर बैठकर योग कराया। कहने का मतलब है दादी जी की शुभ भावना बहुत होती की थी कि हर बाबा का बच्चा यहाँ आदर्श बने आगे बढ़े। तो दादी जी के वरदान से मुझे बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और मनन चिंतन करने की प्रेरणा दादी जी से खास मुझे मिली। और जिससे आर्टिकल लिखने का भी मैंने शुरू किया और कुछ वर्षों तक आर्टिकल भी लिखा। तो यज्ञ के सेवा से बहुत प्यार, जिगरी प्यार हमारा हो, ये मैंने दादियों में देखा, पूर्वजों में देखा। और उसके कारण यज्ञ के प्रति बहुत निष्ठा, बहुत स्नेह मेरा बढ़ता गया और वो बातें मुझे बहुत आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बनी। किचन में सेवा मुझे मिली तो किचन में सेवा मिली तो थोड़ा सा मन खाता था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और किचन में सेवा करता हूं। लेकिन दादी जी इतना प्यार देती थी तो ऐसा लगता ही नहीं था कि हम सेवा साधारण कर रहे हैं। लेकिन दादी जी के प्यार से हम पलते रहे। जैसे दीदी जी ने अभी बताया कि दीदी में लव और लॉ का बैलेंस था, ऐसे प्रकाश मणि दादी जी में भी मैंने देखा। इतना प्यार करती थी जो लौकिक माने भी नहीं किया, इतना प्यार मुझे दादी ने दिया। और जब छोटी मोटी गलती होती थी तो इतनी लॉफुल रहती थी कि किसी की ताकत नहीं होती थी दादी के नजर को नजर मिलाएं दुष्टि लें। तो मैंने देखा लव और लॉ का बैलेंस दादी जी में देखा। तो ब्रह्मा बाबा ने 33 इयर्स यज्ञ को संभाला और दादी जी ने 38 इयर्स संभाला। तो बहुत बातें मैंने छोटी मोटी दादी जी से खास सीखी जिन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब जो चीज बताया शायद हम में से भी कईयों को योग में झुटका आता होगा, लेकिन बड़ों से इशारा मिलकर कैसे भाई साहब ने तुरंत उस पर रेक्टिफाई किया, जिसके फलस्वरूप इतने सालों तक है ना भाई साहब को स्टेज पे योग कराने का मौका मिला। साथ ही साथ कैसे किचन का भी उन्होंने अनुभव बताया कि देह भान न होते हुए भी हमने सेवा की क्योंकि दादियों से बड़ों से प्यार मिला। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है जो हमें परिपक्व बनाता है। तो अगला प्रश्न राजू भाई जी से। तो राजू भाई साहब, कभी कभी परिपक्व जब हम शब्द सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत गंभीर हो जाना, सीरियस हो जाना, बहुत बड़े अपने आप को दिखाना, लेकिन बाबा कभी कभी मुरली में ये भी कहता है कि आप रमणीक भी बनो, बैलेंस रखो। तो आप क्या समझते हैं कि परिपक्व व्यक्ति किस प्रकार बैलेंस रख सकता है गंभीरता रमणीकता का, और पूर्वजों में आपने वो बैलेंस कैसे देखा, थोड़ा इस पर अगर आप मार्गदर्शन करोगे तो अच्छा रहे।
परिपक्व का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गंभीर सूखे सूखे बन जाए। परिपक्व तो हमें ज्ञान और योग से बनना है, और ज्ञान और योग की शक्ति जहाँ है वहाँ हमें माया जीत बनने की सामर्थ्य आती, शक्ति आती, वही परिपक्वता है। तो हमने देखा कि विशेष हमारे यज्ञ में तीन दादाएं थे, चौथे को तो मैं नहीं देखा। विश्वकिशोर दादा ने 68 में शरीर छोड़ दिया था, लेकिन जब मधुबन में मैं आया तो सबसे अधिक प्रेरणा हमें दादा विश्व रतन से मिलती थी। वो हमारे एक मार्गदर्शक भी थे और हर बात करके सिखाते थे, क्योंकि जितनी यज्ञ की कर्मणा सेवाएं थी वो सब दादा ही यज्ञ को करते थे। यज्ञ की उनके पास अपना कमरा नहीं, उनके पास अपनी चारपाई नहीं, बहुत त्यागी तपस्वी और इतने गंभीर और इतने रमणीक, दोनों का बहुत सुंदर बैलेंस। दीदी की जो पत्र व्यवहार की का ऑफिस है, यशोदा दादी जहाँ बैठती थी पांडव भवन में, वहाँ ही एक संदल पड़ा हुआ जहाँ पर दादियाँ पत्र लिखती थी, उत्तर देती थी, उसी संदल पर दादा को सोने की ड्यूटी थी, क्योंकि यज्ञ की सारी भंडारी अमानत वहाँ रहती थी। तो एक पहरे के हिसाब से दादा रात को वहीं सोते थे, और बाथरूम तो गेट पर था, नज़दीक कोई बाथरूम नहीं था। और दादा के कपड़े जो होते थे वो चंद्रहास दादा की ऑफिस में रहते थे जहाँ मुरली की रिकॉर्डिंग होती थी। लेकिन दादा ने कभी ये कंप्लेन नहीं की कि मेरे को कोई साधन नहीं है। वो साधक थे, साधनों के आधार पर उनकी जीवन नहीं थी, और किसी से वो भेंट नहीं करते। कोई भी सेवा दिया दादी ने, कभी कभी हम लोग कहते दादा आपको संकल्प नहीं चलते हैं, हम पिकनिक करने जा रहे हैं, हम दादी के साथ घूमने जा रहे हैं, और दादी आपको कहती है अरे दादा आप भी पहरे पर बैठो, वो पहरा दे रहे हैं और हम घूमने जा रहे हैं दादी के साथ। तो कहती नहीं, हमारी दादी ने कहा, माना बाबा ने कहा, बाबा का डायरेक्शन दादी के द्वारा हमको मिला, हमारा कुछ मिस नहीं होता। इतना आज्ञाकारी कि जो दादी ने कहा जी दादी, कभी उन्होंने ना नहीं किया। और साथ साथ एक एक चीज प्रैक्टिकल करके दिखाई। अगर कोई थोड़ा सा हंसता और जोर से हंस देता, खिलखिला करके हंस देता, तुरंत कहती इधर आओ इधर आओ, देवताएं कैसे हंसते हैं, थोड़ा हंस के दिखाओ मुझे। देवताएं मुस्कराते हैं, ही करके हंसते नहीं है। हंसने में भी विकारों की वायु होती है, इसलिए हंसना नहीं है जोर से, मुस्कराओ अच्छी तरह से। और दादा बहुत प्यार से मुस्कराता था, मुस्करा के दिखाता था। फिर कहता था, चलते तुम लोग कैसे हो, फट 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 क्यों आवाज आती है, चप्पल की आवाज क्यों आती है, देवताएं चलते कैसे, चल के दिखाओ मुझे। तो दादा आगे आगे से चलता था, बिल्कुल आवाज ना हो। तो जब विदेशी लोग मधुबन में आए तो दादा को देख के कहते थे, शायद ब्रह्मा बाबा ऐसे ही होंगे, उनका चलना, उनका मुस्कराना, उनका मिलना, और इतना मिलेंगे प्यार से, हंसते हुए, रमणीकता से। लेकिन कभी भी वो सीरियस नहीं हुए और कभी भी उनको ऐसे नहीं लगा ये तो बहुत रमणीक है, हंस दोने, बहुत बैलेंस युक्त लाइफ थी। कर्मणा सेवाओं में कभी वो पीछे नहीं हटे, और रूहानी सेवाओं में, योग कराने में अगर बैठ गए तो पलक भी नहीं झपकते। 45 मिनट शाम को, सुबह, अमृत वेले योग कराने के लिए दादी ने उनकी ड्यूटी लगाई। बहुत पावरफुल योग करते और कराते, बहुत एक्यूरेट, हर बात में हमारे मार्गदर्शक रहे। जो सेवाएं हमने की, दादा खड़े होकर के सिखाते थे। रोटी बनाना सिखाई, कैसे रोटी बनानी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं जल गई, कच्ची रह गई। दादा उठा के ले आते थे, अगर हमने बनाई रोटी कोई कच्ची रह गई, उठा के लाएंगे, देखो इधर इधर आओ, ये कच्ची रोटी अगर कोई खाएगा तो उसके पेट में दर्द होगा, और नहीं खाएगा तो यज्ञ का नुकसान होगा, इसका बोझ तुम्हारे पर चढ़ेगा, इसलिए जो करना एक्यूरेट करो, नहीं तो छोड़ दो, हम कर लेंगे। ऐसे दादा विश्व रतन, सचमुच वो एक विश्व का रतन थे, बहुत कुछ सिखाया। चंद्रहास दादा इकोनॉमी का अवतार, और सारी बिल्डिंग जितना पांडव भवन बना उन्होंने ही बनवाया खड़े होकर के। वही इंजीनियर, वही बाबा के पर्सनल सेक्रेटरी, लिखना पढ़ना, मुरलियां लिखना, और वही बाबा की संभाल करना, उनको स्नान कराना, बाबा को, बाबा की मालिश करना, सारा चंद्रहास दादा की ड्यूटी थी। और आनंद किशोर दादा तो आनंद स्वरूप थे, और वो सागर थे आनंद के, नाम ही था आनंद किशोर। बहुत रमणीक, कभी कभी हम लोगों के पास आके बैठ जाते, जो उनको मिलता खाने को, फल मिला, टोली मिली, अकेले नहीं खाते, आ जाएंगे, अरे आओ आओ सब आओ, आज हम पार्टी करेंगे। देखो फालतू बातें नहीं करना होती, फालतू को पता क्या कहते थे, FALTU, ये फालतू, फालतू नहीं बोलना, व्यर्थ बातें नहीं करना, हंसना, बहलना, रमणीक। और सबसे नंबर वन यज्ञ में पढ़े लिखे, इंग्लिश में हाईएस्ट इंग्लिश, और रमणीकता में और सेवा में, क्या सेवा पता क्या करते थे, सेवा पहले तो बाद में ऑफिस मिला, लेकिन हमारी हर भाई बहनों को ड्राइव करके, गाड़ी चला करके ले जाते थे, और जो गाड़ी थी ना जिसके वो ड्राइवर बने, ड्राइवर थे, वो गाड़ी एकदम खटारा थी, उसका नाम हम लोगों ने रखा था नानक नाम जहाज। बैठते थे, थोड़ी देर चलती थी, फिर धक्का लगाते थे, और फिर वो हैंडल वाली थी, ऐसे हैंडल घुमा के स्टार्ट करते थे ना, उस समय बैटरी की, बैटरी नहीं होती थी, तो कहते हैंडल लगाओ फिर धक्का लगाओ। और दादा बड़ा हंसता और खूब अच्छी तरह से, कभी पीस पार्क ले जाता, पीस पार्क तो अभी हम कहते हैं उरिया गया, गुरुमुख गए, गौमुख गए, गुरु शिखर गए, तो दादा ही गाड़ी चला के हमारी ले जाता था। तो बहुत रमणीकता से, बहुत आनंदमय स्थिति में रह करके हम सबके साथ बच्चों जैसा प्यार से बात करना, लेकिन इतनी ऊंची हाईएस्ट इंग्लिश होने के कारण जब ऑफिस संभाला है तो उनके पत्रों को पढ़ करके ऑफिसर दंग रह जाते थे, किसने पत्र लिखा है, कौन इतना पढ़ा लिखा विद्वान है। तो दादा आनंद किशोर ऑफिसर थे हमारे यज्ञ के, हमारे ड्राइवर भी बने, और बहुत अच्छे रमणीक, और बाबा के बहुत गुप्त वारिस बच्चे थे। पहली जापान की सेवा में बाबा ने 54 में दादा को दादी प्रकाशमणि के साथ भेजा था, रतनमणि दादी, दादी और दादा आनंद किशोर गए और एक साल तक तीनों वहां रह करके खूब सेवाएं की और सेवा करके इतने चित्र बनवा के लाए जो भारत की फुल सेवा के निमित्त बनी है। तो दादा की बहुत विशेषताएं थी, तीनों दादा की बहुत पालना ली हम लोगों ने और कई गुण कई विशेषताएं उन्हीं से सीखी।
शुक्रिया। तो भाई साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस तीनों दादाएं रखते थे और छोटी छोटी चीजें देखते थे कि किस प्रकार मुस्कुराना है ना, क्योंकि खिलखिला के हंसना भी देवताओं जैसा हंसना नहीं है, किस प्रकार चलना, छोटे छोटे व्यवहार, साथ ही साथ अगर ऑफिस का कारोबार कर रहे हैं पत्र व्यवहार, उसी के साथ साथ गाड़ी भी चलाने का, तो इन चीजों का भी बैलेंस हमारे पूर्वजों ने दिखाया है। तो शुक्रिया भाई साहब। अगला दीदी आपसे प्रश्न कि बहुत कुमार ऐसे समझते हैं या भाई बहने समझते हैं कि जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो परिपक्वता का अर्थ पता चल जाता है, कैसा करना है क्या करना, बाबा रोज शिक्षाएं देते हैं, लेकिन वास्तव में टेस्ट तभी होती है जब हम कर्म में आते हैं या फिर जब परिस्थिति आती है, पेपर आते हैं। तो आपने तो दीदियों की दादियों की पालना ली है, तो उनके जीवन में भी कुछ ऐसे बड़े पेपर आए होंगे, यज्ञ के अंदर कुछ ऐसे बड़े पेपर आए होंगे, तो उन्होंने आध्यात्मिक परिपक्वता से कैसे उन पेपरों को आसानी से विजय प्राप्त की, ऐसे क्या चीज की, कुछ भी अगर आपको एक या दो ऐसे इंसिडेंट याद आते हैं कि उन्होंने कैसे पेपरों को क्रॉस किया, तब बताना। भूषण,
दादी कोई भी यज्ञ के अंदर जब भी पेपर आते थे, कोई प्रॉब्लम आती थी, तो बड़ी दादी जी हमेशा योग का प्रोग्राम रखती थी। कहती थी कि विशेष योग करो और जितना योग करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बार रामलीला ग्राउंड के अंदर पहला मेला लगने वाला था, तो वहां पर रामलीला ग्राउंड हम सबको मिला हुआ था, लेकिन उस समय पर ही रशिया के प्रधानमंत्री आने वाले थे, तो वो प्रोग्राम कैंसल हो गया कि भाई वहां उनका प्रोग्राम होगा और अपना मेला नहीं होगा, और मेला लग चुका था। तो दादी जी ने उस समस्या को हल करने के लिए कहा कि विशेष योग पट्टी रखी। तो उस समय पर जो भी वहां कारोबार चल रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो सब बंद करा करके सब भाई बहने वहीं मैदान के अंदर योग में बैठ गए। और योग में बैठे तो गवर्नमेंट को अप्लाई तो किया था कि भाई हमारा ये प्रोग्राम है, आप और जगह करें। तो वो ऑफिसर्स जब देखने के लिए आए तो सारे लोग बैठे हुए थे योग में, इतनी संख्या में सारे योग में बैठे देखे, तो वो देख करके एकदम हैरान हो गए कि ये तो योग में बैठे हुए हैं और इतने सारे हैं, और कल अगर हम इनको मना करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो विशेष दादी जी कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कोई भी समस्या आती थी, तो हमेशा दादी हमको यही कहते थे कि विशेष योग करो और विशेष योग से ही समस्या का समाधान होता था। और हम सब ने भी ये प्रैक्टिकल अनुभव ही किए हैं कि कोई भी बात आती है जब हम उसके लिए विशेष योग करते हैं। बाबा ने हमको योग का यह हथियार इतना अच्छा दिया है, जो योग हमको हर समस्या का समाधान भी कराता है और योग हमारे को मन इच्छित फल भी देता है। तो योग के द्वारा ही दादियों ने हमको योग करना सिखाया और योग के द्वारा कैसे हम समाधान कर सकते हैं वो सिखाया। भाई साहब ने दादी की बात, बाबा के दादाओं की बात सुनाई, तो मैं भी एक विश्व रतन दादा की बात सुना देती हूँ। विश्व रतन दादा हमारे यज्ञ के डॉक्टर भी थे। किसी को कोई भी दवाई लेनी होती उस समय पर कोई डॉक्टर नहीं थे, और आबू में हॉस्पिटल भी एक ही सरकारी हॉस्पिटल था, तो वहां तक जाएं तो जो भी होते थे, उन जिनको भी कुछ होता था, तो हमारे विश्व रतन दादा ही दवाई देते थे, इंजेक्शन लगाते थे और उनकी एक ये विशेषता थी, दादा हमेशा लास्ट में भोजन करने के लिए जाते थे। जब सब खा लेते थे तो दादा लास्ट में जाते थे, कई बार लास्ट में सब्जी भी नहीं होती थी, कुछ खत्म हो जाता था, लेकिन दादा कभी नहीं कुछ बोलते थे। जो बाबा के भंडारे से मिला वो थाली में लिया और खाया, प्यार से खा करके आते थे। ऐसे उनके जीवन के अंदर त्याग और तपस्या थी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो योग की शक्ति का जैसे दीदी ने बताया कितना पावर होता है कि कोई भी विघ्न के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ दादा डॉक्टर भी थे, ये हमें भी नहीं पता था, तो कितने मल्टी टैलेंटेड है। हमें कभी कभी कोई सेवा नहीं आती है तो कभी कभी बोल देते हैं ना हम में से कुछ कि ये मुझे नहीं आता, वो नहीं आता है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि हमारे पूर्वज केवल एक ही नहीं, चाहे पहरा देना, चाहे भोजन बनाना, चाहे पत्र व्यवहार करना, चाहे किसी का इलाज करना, तो ऐसे बहुरूपी जब भी हम ऑलराउंडर बनेंगे तो ऑटोमेटिकली परिपक्वता आएगी ही। अभी अगला प्रश्न हम आत्म प्रकाश भाई जी आपसे पूछेंगे। तो अभी आजकल की जनरेशन है, आजकल के युवा है, वो कभी कभार कंपैरिजन करते हैं कि जो समस्या आज हमारे जीवन में है शायद वो यज्ञ के पूर्वज के जीवन में नहीं थी। उदाहरण के तौर पर आजकल डिजिटल गैजेट्स होते हैं, इतना इंटरनेट है, इतना एक्सपोजर है, मीडिया है, या फिर और भी कई चीजें हैं, पोल्यूशन हम देखते हैं, या फिर जॉब की समस्या होती है कन्याओं को, कुमारों को। तो ऐसे स्थिति में होते हुए भी हम आध्यात्मिक परिपक्वता कैसे अपने जीवन में लाए, कैसे वो मैच्योरिटी लावे। हम तो समझते कि पूर्वजों के भी जीवन में कुछ तो डेफिनेटली चैलेंज होगी, आज हम लोग तो आसानी से ज्ञान ले रहे हैं, तो ये कनेक्ट आप थोड़ा करके बताना कि किस प्रकार उन्होंने उस प्रकार से चीजों को किस प्रकार से विजय प्राप्त की थी और आज के माहौल में हम कैसे विजय प्राप्त करें, मैच्योरिटी को कैसे जीवन में अप्लाई करें। ओम शांति।
पुराने जो दादिया दादाएं थे उन्होंने अपने समय और संकल्प के खजाने को बहुत महत्व दिया। मैं समझता हूं उनके होते हुए ये मोबाइल वगैरह ये सोशल मीडिया नहीं थी उतनी, लेकिन आजकल का जनरेशन जो है माया ने सबके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया मोबाइल और इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण ये समय और संकल्प के खजाने को बहुत वेस्ट करते हैं। तो पुरानी जो दादियां हैं वो इन साधनों को इतना महत्व नहीं देते थे। मुझे याद है रामायण जब निकला तो प्रकाश मणि दादी जी सभी मधुबन निवासियों को क्लास में बुलाती थी और रामायण का एपिसोड देखने के लिए बोलती थी, क्योंकि कुछ बातें उनसे सीखने के लिए हमें मिलती थी और हम जाते थे। तो मीडिया का सकारात्मक रीति से दादियों ने उपयोग लिया आगे बढ़ने के लिए, उन्नति होने के लिए प्रयोग किया, लेकिन हम आजकल देखते हैं इसमें उन्नति थोड़ी सी होती है लेकिन नुकसान जास्ती होता है। इसलिए इन बातों से बचकर रहना है, ये हमें दादियों से सीखना है। समय और संकल्प का खजाना बहुत मूल्यवान है, ये जीवन की अमूल्य संपत्ति है, उनको यथार्थ रीति से यूज करना, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना, ये हमें पूर्वजों के द्वारा सीखना है। जैसे राजू भाई जी ने दादा विश्वरतन दादा जी का एग्जाम्पल दिया, तो वो उन्होंने बहुत महत्व दिया और अपनी स्थिति को निखारा और उदाहरण बने, एग्जाम्पल बने। ऐसा हमें भी एग्जाम्पल बनना है, उसके लिए इन खजानों को सकारात्मक रीति से यूज करना है, ऐसा उनसे हमें सीखना है। इसके अलावा मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि प्रकाशमणि दादी जी का नाम दादी कुमार का भी था, कुमारों की दादी कुमार का। जब कुमारों का ग्रुप झुंड मधुबन में आता था तो दादी को पता नहीं कितनी खुशी होती थी, कुमारों को क्या रखो, क्या खिलाऊं, कहां सुलाऊं, इतना दादी सोचती थी। और हमें और सूरज भाई को बुलाती थी कि इन कुमारों के लिए गुलाब जामुन बनाना है, आलू के चिप्स बनाना है, समोसा बनाना है, ये कहां जाएंगे, बाबा के घर में ही खाएंगे ना। तो कहने का मतलब कुमारों का इतना ध्यान रखती थी, भाई ताली बजाओ ना जरा कुमार। तो कुमारों का बहुत ध्यान रखती थी, कुमारों को बहुत आगे बढ़ती बढ़ाती थी। और मैंने एक दादी जी की विशेषता देखी, सदा उमंग उत्साह में रहती थी और सबको उमंग उत्साह में रखती थी। ये ओम शांति भवन बना, उस समय बहने भाइयों ने बहुत मेहनत की, अपने हाथों से सेवा की। उस समय दादी मुख में टोली खिलाती थी, उनकी थकान मिट जाती थी, इतना बड़ा बाबा ने सेवा उनके द्वारा, बच्चों के द्वारा कराया। तो ये विशेषता दादी की थी। मेरे होते हुए नकेल एक दो बार खाली हो गया पानी बिना सूखा, तो दादी खुद आती थी हमारे साथ। सब भाई मधुबन वाले जाते थे, मिट्टी खोदते थे और कार सेवा करते थे, तो दादी लास्ट में सबको मुख में टोली खिलाती थी, सबकी थकान मिट जाती थी। तो ये विशेषता खास दादी की थी कि सबको प्यार करती थी और सेवा भी उनसे कराती थी। तो ये पूर्वजों से हमने यही सीखना है, जैसे वो रोल मॉडल हमारे लिए थे, ऐसे हमें भी रोल मॉडल बनाना है। उनकी जैसी श्रेष्ठ स्थिति महान थी, ऐसे हमें भी उनके समान बनना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम पूर्वजों से सीख सकते हैं और ये जीवंत उदाहरण है हमारे सामने। और कहानी तो ऐसे है कि जितना सुने कमी पड़ते जाएंगी, लेकिन समय भी आगे बढ़ रहा है, तो इस चर्चा को यही हम विराम देंगे। और हम तीनों का धन्यवाद करेंगे कि आपने अमूल्य समय निकाल कर आए, और हम सभी की झोलियों में इतने सारे ज्ञान रत्न भरे, एक एक चीज जहां पूर्वजों ने ध्यान रखा और हमारा जीवन बनाने के लिए, वो न केवल उस समय लेकिन आज के जीवन में भी हमें वह उपयोगी चीज है। सभी को लगता है ऐसे? एक बार दोबारा ताली बजा के हम तीनों का धन्यवाद करेंगे। तो आज का सत्र यही, अभी हम योग करेंगे। उसके पूर्व कल जो अमृत वेला है, अमृत वेला जो कुमार भाई है, आपको इस हॉल के पीछे जो प्लाजा है वहां पर आना है कल 4 बजे के पूर्व। और जो टीचर और कन्याओं का ग्रुप है, आपको अपने जो रिस्पेक्टिव हॉल है 7 नंबर और 5 वहां पर ट्रेनिंग हॉल में, वहां पर अमृत वेला करने जाना है। तो अभी हम सभी 3 मिनट बाबा को पावरफुल याद करेंगे और फिर समाप्त करेंगे। ओम शांति।
वो कितना प्यारा है, वो कितना प्यारा है, अपने प्यारे बाबा का प्यार। वो कितना प्यारा है, अपने प्यारे बाबा का प्यार। इसमें खुशियाँ है अपार, इसमें जन्नत के बाहर। वो कितना प्यारा है, अपने प्यारे बाबा का प्यार।